ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா செப்டர் 18, டெக்ஸ்ட் நம்பர் 51, 52 அண்ட் 53. கிருப்பையா இன் பவித்ர சப்தோங்கோ மேரே சாத் சாத் உச்சாரண் கர்னே கா பிரயாஸ் கீஜியே. பகவான் கேத்தே ஹே, புத்தயா விஷுத்தயா யுக்தோ தித்யாத்மானம் நியம்ய ச சப்தாதீன் விஷயாஸ்த்யக்த்வா ராக த்வேஷோ யுதஸ்ய ச விவிக்தசீவி லக்வாசி யதவாகாய மானஸஹ த்யான யோக பரோ நித்யம் வைராக்யம் சமுபாஷ்ரிதஹ அஹங்காரம் பலம் தர்பம் காமம் க்ரோதம் பரிக்ரஹம் விமுச்ய நிர்மமஹ சாந்தோ ப்ரஹ்ம பூயாய கல்பதே. புத்தயா விஷுத்தயா யுக்தோ த்ரித்யாத்மானம் நியம்ய ச சப்தாதீன் விஷயாஸ்த்யக்த்வா ராக த்வேஷௌ யுதஸ்ய ச விவிக்தசீவி லக்வாசி யதவாகாய மானஸஹ த்யான யோக பரோ நித்யம் வைராக்யம் சமுபாஷ்ரிதஹ அஹங்காரம் பலம் தர்பம் காமம் க்ரோதம் பரிக்ரஹம் விமுச்ய நிர்மமஹ சாந்தோ ப்ரஹ்ம பூயாய கல்பதே. புத்தயா விஷுத்தயா யுக்தோ த்ரித்யாத்மானம் நியம்ய ச சப்தாதீன் விஷயாஸ்த்யக்த்வா ராக த்வேஷௌ யுதஸ்ய ச விவிக்தசேவி லக்வாசி விவிக்தசேவி லக்வாசி யதவாகாய மானஸஹ த்யானயோக பரோ நித்யம் வைராக்யம் சமுபாஷ்ரிதஹ அஹங்காரம் பலம் தர்பம் காமம் க்ரோதம் பரிக்ரஹம் விமுச்ய நிர்மமஹ சாந்தோ ப்ரஹ்ம பூயாய கல்பதே. புத்தயா விஷுத்தயா யுக்தோ த்ரித்யாத்மானம் நியம்ய ச சப்தாதீன் விஷயாஸ்த்யக்த்வா ராக த்வேஷௌ யுதஸ்ய ச விவிக்தசேவி லக்வாசி யதவாகாய மானஸஹ த்யானயோக பரோ நித்யம் வைராக்யம் சமுபாஷ்ரிதஹ அஹங்காரம் பலம் தர்பம் காமம் க்ரோதம் பரிக்ரஹம் விமுச்ய நிர்மமஹ சாந்தோ ப்ரஹ்ம பூயாய கல்பதே. शब्दों का अर्थ देखिए. बुद्धया अर्थात बुद्धि से, विशुद्धया नितांत शुद्ध, युक्त यानी रक्त यानी शुद्ध बुद्धि में होकर, धृत्या यानी धैर्य से, आत्मानम यानी स्व को अपने आप को नियम या वश में करके, च यानी कि जो अपने आप को धैर्य से विशुद्ध बुद्धि के द्वारा युक्त रखकर बिल्कुल नियमित करता है. और आगे शब्दादीन यानी शब्द आदि जितने भी विषय है ना, जैसे शब्द रूप रस गंध स्वाद इत्यादि, शब्द आदि विषयान त्यक्तो, विषय मतलब इंद्रिय के जितने भी विषय हैं, त्यक्तो उनको त्याग कर राग आसक्ति द्वेष तथा घृणा को, यानी प्रेम और द्वेष भाव दोनों को, युदस्य च एक तरफ रखकर उनको भी त्यागना है। किसको? सारे विषय इंद्रियों को प्लस जो राग और द्वेष की भावना है उसको त्यागना है, एक तरफ करना। च विविक्त स्वेवी, और एकांत स्थान में रहना। लघु, लघुवाशी का मतलब होता है अल्प भोजन खाना, ज्यादा ठूस ठूस का खाना नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाना खा ले। यत्त यानी वश में करके वाक वाणी को, जो अपने वाणी को भी वश में करता है, खाने की वो भी वश में करता है। काय यानी शरीर को, मानस मना मन को, ध्यान योग यानी समाधि में लीन, नियम नित्यम यानी 24 घंटे कंटिन्यूस इसी अवस्था में रहता है। वैराग्यम वैराग्य का समुपाश्रित आश्रय लेकर, और अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार यानी मिथ्या अहंकार, बलम यानी झूठे बल को, दर्पम यानी झूठे घमंड को, और कामम क्रोधम परिग्रहम, काम मतलब इच्छाओं को, क्रोध मतलब गुस्से को, परिग्रहम भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, विमुच्य इन सबको क्या करता है, त्यागता है। निर्ममः यानी स्वामित्व की भावना से रहित, मेरा कुछ नहीं। और शांतः यानी शांत, ब्रह्म भूयाय कल्पते, आत्म साक्षात्कार के लिए कल्पते यानी योग्य होता है। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, अपनी शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार मिथ्या शक्ति मिथ्या गर्व काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त होता है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हृदय से समस्त भौतिक आसक्ति और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साघजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सशिवम् सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सूति देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता की जय हो। आज भगवान हमें परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जिस तरह से पहुंचा जाता है उसके विषय में भगवान हमें चैप्टर नंबर 18 टेक्स्ट नंबर 51, 52, 53 में भगवान बताते हैं, क्योंकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था श्लोक नंबर 50 में भगवान ने कहा सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था यानी ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है उसको प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षिप्त में तुम्हें वर्णन करूंगा, तुम उसे सुनो। अब यहाँ भगवान ने कहा है, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तीन श्लोकों में भगवान ने कहा ना समासेना संक्षिप्त में बताऊंगा, यानी तीन श्लोक में ही भगवान ने पूरा का पूरा ब्रह्म को कैसे प्राप्त करते हैं वो पूरा का पूरा पूरी विधि भगवान ने बता दी, यानी संक्षिप्त में भगवान ने यहाँ पर बताया। तो हम इस श्लोक को श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा पहले समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते देखिए ये श्लोक और श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य आपस में बिल्कुल एज इट इज श्रील प्रभुपाद ने बताया, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा। सबसे पहले भगवान ने कहा बुद्धिया विशुद्धया युक्तो, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, यानी कि जो बुद्धि से शुद्ध हो जाता है और कहाँ पहुंचता है, वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। यानी कि फिर जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो जाते हैं, सत्व गुण में स्थित हो जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धृत्यात्मानम नियम्यच, तो भगवान ने कहा धृत्यात्मानम नियम्यच, तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। धृत्यात्मानम नियम्यच यानी धैर्य से वो क्या करता है, आत्मा को अपने आप को अपने मन को नियमित करता है, वश में करता है और समाधि में रहता है। जब वो सत्व गुण में आ जाता है तो उसका मन नियमित हो जाता है। उसके बाद भगवान कहते हैं शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, यानी वह जो विषय है इंद्रियों के, कौन सी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कौन सी आंख कान नाक त्वचा रसना, और उनके विषय कौन से हैं, रूप रस स्वाद गंध तथा स्पर्श। तो आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रहता, आसक्त नहीं रहता, यानी कि ये नहीं सोचता अब, क्योंकि उसका मन शुद्ध है, मन अपने वश में है और बुद्धि एकदम शुद्ध है, शुद्ध सत्व में वो आ गया है। तो फिर उसको ये पता चल गया ना, शुरू में भगवान ने क्या कहा, बुद्धि अविशुद्ध है। तो जब उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो वो इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि वो अपने आप को यह भौतिक शरीर नहीं समझता है। तो फिर उससे रिलेटेड कोई चीज, जैसे उनके विषय, इंद्रियों के विषयों में उसको कोई आसक्ति नहीं रहती, तो भगवान ने कहा शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, तो फिर अपनी विषयों को हटा देता है, शब्दों जितने भी विषय हैं उनकी तरफ आसक्त नहीं रहता। और आगे कहा भगवान ने राग द्वेषो युदस्य च। अब इसको देखें, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त रहता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है राग तथा द्वेष, यानी कि इस संसार में जो भी हम जिसको भी प्रेम कहते हैं ना, अब ये भागवत प्रेम का विकृत रूप है वो तो ठीक है, क्योंकि प्रेम का क्या मतलब होता है, जो कभी परिवर्तित ना हो। वास्तव में जो प्रेम है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो प्रेम ही रहता है चाहे कुछ भी हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आशिष्य वा पादरतां विनष्टु मामदर्शनम् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एवनापरः। कृष्ण तुम ही मेरे प्राणनाथ हो, चाहे तुम मुझे आलिंगन कहो या अपने पैरों से कुचल दो या दर्शनों से वंचित रखकर मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न कर लो, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। तो कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा तारनाम प्रेम, तो प्रेम का मतलब होता है जो कभी परिवर्तित ना हो। अब कृष्ण तुम्हें सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, तुम्हें दर्शन भी नहीं दे रहा है, मतलब ये प्रेम की अवस्था है कि उसमें राग और द्वेष नहीं होता। प्रेम में राग भी नहीं होता है, राग यानी आसक्ति कभी हो गई, राग का मतलब होता है कभी डाउन कभी अप, कभी अप डाउन अप डाउन, ऐसे नहीं। अभी देखो संसार में हम जिससे भी प्रेम करते हैं वो क्या होता है, कभी वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसने हमारी कोई बात जो है उसको वैल्यू नहीं दी होती हो या फिर हम लोगों का दिल दुखाया होता है, तो फिर वो प्रेम में बोलते हैं बात ही नहीं करनी चाहिए उससे, तो वो मुझे अच्छा ही लगता बिल्कुल, ऐसे करते हैं। और ऐसे कोई करना होता है, मैंने उसके लिए इतना अच्छा किया और उसने मुझे रिजल्ट में ये किया, इस तरह प्रेम जो होता है ना रियल प्रेम, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता है। इसे भगवान ने कहा राग द्वेष व्युदस्य च। व्युदस्य मतलब उसको एक तरफ रखना, बिल्कुल ना राग करना किसी चीज से और ना ही द्वेष करना, क्योंकि वो प्रेम का लक्षण नहीं है। और श्री प्रभुपाद ने कहा अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से रहित मुक्त होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा विविक्त सेवी लघुवाची। विविक्त सेवी मतलब ऐसा विरक्त, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावता ऐसा विरक्त हो जाता है, किसी चीज में उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है, इंद्रिय विषय में कोई आसक्ति नहीं होती है, मन पे पूरा कंट्रोल होता है, शुद्ध सत्व में होता है, तो फिर वो क्या होता है विविक्त सेवी, वो विरक्त रहता है, विरक्त स्वभाव का होता है। लघुवाशी मतलब वो स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। लघुवाशी का मतलब होता है उसको रश अच्छी नहीं लगती है, बस वो चाहता है कि मुझे एक कोना मिल जाए जहां पर बैठ के मैं अपने प्रीतम को स्मरण कर सकूं, बस उसको रश नहीं अच्छी लगती। सॉरी, विविक्त सेवी का मतलब होता है एकांत स्थान में रहना पसंद करता है, और लघुवाशी का क्या मतलब होता है, लघु मतलब बहुत कम, आशी मतलब खाना, यानी कि उसका भोजन बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि हर टाइम पर उसको खाने में ही रुचि रहे, क्योंकि ये जिह्वा जो है ना वो जब उसको टेस्ट की इच्छा होती है ना तब भजन में उसका मन नहीं लगता। ये जीवा दो कार्य करती है, जैसे मैंने बताया ना, ये कर्म इंद्रिय भी है ज्ञान इंद्रिय भी है। अब जब कर्म इंद्रिय है ये, इसको टेस्ट का जब आ जाए तो फिर बात यानी कि बोलना, जो भगवान के विषय में बोलना, भगवान के नाम का स्मरण करना, ये उस काम को फिर बहुत लाइट लेती, वो काम उससे होता नहीं है जिस जिह्वा को खाने की बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उसको खाने की इच्छा होती है ना। इसलिए शास्त्र के दशरथ रूप गोस्वामी बताते हैं, जिह्वारे लालसा यदि इति उति ध्याय शिष्णु पराण कृष्ण नहीं पाए, यानी कि जब वो जीभा की लालसा सारा दिन ये खाओ वो खाओ, पिज्जा बर्गर ये यहाँ कुछ ना, जैसे नीचे ठेले खड़े होते हैं उधर ये खाओ वो खाओ जो भी बस मिल जाए डालते जाओ, जैसे डस्टबिन समझ रखा है इसको कि जो भी कचरा मिलेगा वो इसके अंदर डालना है, जीभा से खाते रहना। तो ऐसे नहीं, जो विरक्त है, विरक्त सेवी यानी जो अलग सब चीजों से बिल्कुल विरक्त हो गया है, इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं लघुवाशी का मतलब है वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं है, बस जितनी आवश्यकता, मतलब जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता। और जिस तरह अपने खाने के जोर को, वेग को रोकता है, उसी तरह बताया आगे भगवान कहते हैं यथा वाक आया मानुसा, वाक मतलब बोलने के जोर को, काय मतलब शरीर की क्रियाओं को, मानस मतलब मन की क्रियाओं को, वाक मतलब बोलने के जोर को, काय मतलब शरीर के जितने भी इंद्रिय के साधनों को, और मन मतलब मन के। तो यहाँ पर हमें श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश अमृत का पहला श्लोक याद आता है ना, जहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपास्थ वेगम, ये सारे जैसे उसने बोला कम खाता है, अपने शरीर की मन की और इंद्रियों की क्रियाओं को रोकता है, और इस तरह से क्या करता है वो अलग रहने की कोशिश करता है, ज्यादा बात नहीं करता। तो ये सारी चीजें एक ऐसे शुद्ध भक्त के अंदर जो कि ब्रह्म स्थिति को पहुंचना चाहता है, ये सारी स्टेजेस होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बताया यत वाकाय मानस, मतलब अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों को नियंत्रित रखता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा ध्यान योग परो नित्यम, अब इस तरह से वो क्या करता है ध्यान योग में आ जाता है। ध्यान योग के विषय में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने नहीं लिखा है, क्योंकि ध्यान योग के लिए तो भगवान ने पहले पूरा एक अध्याय दे दिया, अब उसको हम बाद में पढ़ते हैं, आगे चले। उसके बाद है कामम ध्यान योग करो नित्यम वैराग्यम समुपस्थित, वैराग्यम क्योंकि जब ध्यान योग आ जाएगा तो, और ये सब चीजें जब हमारे अंदर नहीं होंगी, ये जो भगवान ने बताई है कि शब्दादि विषयांत्यक्ता राग देव, किसी विषय में आसक्ति नहीं होगी, राग और द्वेष नहीं होगा, और अलग जगह पर रहने की इच्छा करेंगे, कम बात करेंगे, कम खाएंगे, अपनी शरीर मन वाणी की गतिविधियों को रोकेंगे, तो ध्यान योग परो नित्यम वैरागम समुपाशित, ये भगवान ने बताया कि ये जब इस तरह से ध्यान योग में आप आ जाओगे तो वैराग्य हो जाएगा संसार से। आगे भगवान कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, अब ये जितनी भी चीजें हैं कौन कौन सी, एक अहंकार, दूसरा बल, तीसरा दर्प, चौथा काम, पांचवा क्रोध, छठा परिग्रह, इन सबको क्या करना है विमोच्य, जो दूसरी लाइन में लिखा हुआ ना विमोच्य, उसके बारे में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसे कैसे है ये अहंकारम विमोच्य, बलम विमोच्य, दर्पम विमोच्य, कामम विमोच्य, क्रोधम विमोच्य, परिग्रह विमोच्य। विमोच्य का मतलब होता है इन सबको त्यागना है। तो पहले यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी, पहला शब्द है भगवान ने कहा अहंकारम, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वह मिथ्या अहंकार से रहित रहता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। अब अगर हम लोग शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, तो संसार में जितनी भी चीजें हैं जिन पर हम अहंकार करते हैं, चाहे वो रूप हो, चाहे धन हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे एजुकेशन हो, जिस पर भी गर्व किया जा रहा है वो भौतिक शरीर से रिलेटेड है। लेकिन क्योंकि वो जो यहाँ पर जिस ब्रह्म भूया कल्पति व्यक्ति के विषय में बात हो रही है वो तो आध्यात्मिक स्तर पर होता है, वो तो अपने आप को शरीर समझता ही नहीं है, तो अहंकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अब अहंकार अलग बात होती है और एक मिथ्या अहंकार होता है, एक रियल अहंकार होता है। उसको इस बात पे अहंकार हो सकता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान संसार के रचयिता है, मैं उनका दास हूँ, ये एक अलग अहंकार। लेकिन शरीर से रिलेटेड किसी चीज पर अहंकार विमुच्यते है, उसको कोई अहंकार किसी भी चीज पर नहीं होता क्योंकि अपने आप को शरीर नहीं समझता। आगे बलम विमुच्य, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, ना ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता। बलम विमुच्य यानी कि अपने अहंकार को कैसे तोड़ता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर से रिलेटेड की कोई चीज मेरी नहीं। अब बलम विमुच्य कैसे है, बलम को कैसे छोड़ता है, तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बताते हैं कि वो भौतिक इच्छा, भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करके, यानी भौतिक वस्तुएं कौन सी होंगी, अब दो तरह की वस्तुएं हम खाते हैं, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। अब भौतिक वस्तुएं वो होती हैं जो कि इस संसार की होती हैं। अब जो भी खाएंगे तो जाहिर सी बात है भौतिक ही होंगी, लेकिन वही भौतिक वस्तुएं जो इस संसार की होती हैं, जब वो भगवान को अर्पण हो जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो आध्यात्मिक बन जाती हैं। अब वो इस संसार का भोजन, भोग्य वस्तु नहीं रह जाती हैं, अब भगवान का प्रसाद बन जाते। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी जैसे बलम विमुच्य का क्या बता रहे हैं कि वो अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए भौतिक वस्तुएं स्वीकार नहीं करता। कुछ कुछ लोग ऐसे, जैसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं ना कि भाई आप अंडा खाओ तो फिर आपको है ना पावर मिलेगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि निषेध है, जो कि भगवान को अर्पण नहीं की जाती है, वो खाने के लिए भी बोलते हैं। या फिर हम लोग बाहर से अलग अलग जगहों पे जाके कुछ रेस्टोरेंट्स में और इस तरह से ऐसी चीजें खाते हैं जो भौतिक वस्तु है ना। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ना ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। कोई भी ऐसी चीजें जो भगवान को प्रसाद के तौर पर अर्पण नहीं कर सकते, जैसे सुअर कुत्ते खाते हैं ना, कुछ भी खा लेते हैं, उनको सुअर को मल खाना अच्छा लगता है, तो वो ऐसे गंदी वस्तु है, सबसे गंदी चीज होती है ये, लेकिन फिर भी वो उसको अच्छा लगता है। तो मनुष्य को पशु के स्टेज से ऊपर आना है, मनुष्य को इस तरह कुत्ते और सुअरों की तरह जो भी आ जाए उसमें मुंह नहीं मारना है, जो भगवान को अर्पण। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत अच्छे तरीके से 3.13 में बताया कि भुंजते थे तो अगम पापा में ये पसंद थे आत्म कारण, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सिर्फ खाता है, भोजन बनाता है, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा अपराधी बना देता है, पाप खाता है। तो फिर मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि मैं पाप क्यों खाऊं, मैं तो वो खाऊं जिससे मेरे ना शरीर को पुष्टि मिले, मैं आध्यात्मिकता में तरक्की कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। और भौतिक वस्तुएं स्वीकार नहीं करेगा, ये जो साधारण चीजें जो संसार में होती हैं, जो भगवान को अर्पण नहीं की जाती, लेकिन कहते हैं ना भाई इससे पावर आएगा, ये खाओ इससे पावर आएगा, लेकिन जो चीज भगवान को अर्पण नहीं हो सकती है वो कभी भी हमारे लिए हितकर नहीं हो सकती है। इसे यहाँ पर बताया बलम विमुच्य यानी अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके अपने शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा ही नहीं होती है। उसको बोलते हैं भले इससे बेहतर है मेरा शरीर भले कमजोर हो जाए, लेकिन मैं वो चीज को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा जो कि भौतिक है, जो भगवान को अर्पण नहीं की जाए। उसके बाद दर्पण विमोच्य, हम इन सब पे जाएंगे ना, तो दर्पण विमोच्य का क्या मतलब होता है, आगे श्रभुपाद जी बता रहे हैं, चूंकि वे देहात्म बुद्धि से रहित है अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। अब मिथ्या गर्व एक अहंकार होता है, मैं और गर्व मतलब मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो वो क्योंकि उसका तो कुछ होता ही नहीं, उसको पता होता है जो कुछ है प्रभु आपका, मेरा तो कुछ नहीं, तो फिर उसको दर्प नहीं होता। और कामम विमोच्य, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी उसके विषय में बता रहे हैं कि भगवत कृपा से उसने उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उससे ही वह संतुष्ट होता रहता है, यानी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता है, जो कुछ उसके पास है उस पे संतुष्ट है। कुछ लोग को ऐसा होता है ना, जितना भी मिले जितना भी मिले जितना भी मिले उसको कम लगता है, लेकिन वो भौतिक चीजों को हासिल करने के लिए इतना ज्यादा प्रयास नहीं करता, मतलब काम ही नहीं होता है, उसको इच्छा नहीं होती है, भगवत के पास जो भी उसको मिला है उस पे वो संतुष्ट रहता है। और आगे क्रोधम विमुच्य, ये सब विमुच्य है, इन सबको छोड़ना है, तो क्रोध को कैसे, यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और इंद्रिय तृप्ति ना होने पर कभी क्रोध नहीं होता, क्रोध वास्तव में भगवान श्री कृष्ण बोलते काम ऐश क्रोध ऐश, क्रोध काम की पैदावार है। जब काम होता है तो फिर काम की पूर्ति के बाद तो क्या होता है, हवस ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसको इंद्रिय तृप्ति, पहले से बोला शब्दादि विषय अंत्यक्त, जो शब्द आदि जितने भी विषय हैं उनको तो वो छोड़ ही देता है, तो इंद्रिय तृप्ति ना होने पर उसको कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के विषय में तो पहले ही बोला यत वाकाय मानसा, उसको शरीर मन और बात करने की सारी चीजों पर कंट्रोल होता है, इन सारे विषयों पर कंट्रोल होता है, तो उसको गुस्सा भी नहीं आता है। और आगे परिग्रह, परिग्रह का क्या मतलब होता है कि जैसे हम भौतिक वस्तुओं को जमा करते हैं ना, परिग्रह का मतलब होता है भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, जितनी भी भौतिक चीजें हैं ना उसको जमा करने का। आगे भगवान इसके साथ क्या लगा रहे हैं, विमुच्य, कि उसको विमुच्य करना, वो भी नहीं करना है। तो यहाँ विष्णु प्रभुपाद जी बताते हैं ना ही वे इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, कि वो चीजें नहीं जमा करता है कि ये भी मुझे चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, उसके पास तो जो कुछ है उससे संतुष्ट हो जाएगा। और आगे निर्ममा, आगे भगवान कहते हैं निर्ममा, निर्ममा का क्या मतलब होता है, कुछ लोग बोलते हैं ना निर्मम, ये बहुत निर्मम है, ये बहुत कठोर है, निर्मम का मतलब कठोर नहीं होता है, निर्मम का निर मतलब नहीं, ममा माना मेरा, वो ये समझता है कि मेरा कुछ नहीं है, ममता रहित होता है, इसे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त होता है तो वह फिर आगे भगवान कहते हैं शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, शांतो यानी कि वो शांत रहता है, कैसे, जब वो निर्मम हो जाता है, तो निर्मम कैसे होता है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है, और क्योंकि इसे किसी भी चीजों में आसक्ति नहीं रहती है, सारी भौतिक चीजों से उसकी ममता खत्म हो जाती है, क्योंकि वो जानता है कि ये भौतिक चीजें मेरी है ही नहीं, मेरा तो ये अपना शरीर भी मेरा नहीं है, तो फिर वो विरक्त हो जाता है, की ममता खत्म हो जाती है। और आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है यह। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते, यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, कौन सी, जब इसके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं, यानी कि जब वो बिल्कुल अपनी बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है और धैर्य से के साथ जितने भी शब्द आदि विषय हैं उनको त्याग देता है, राग और द्वेष को त्याग कर देता है, और अलग जगह पे रहता है, कम खाता है, शरीर मन वाणी को कंट्रोल करता है, और आगे क्रोध काम क्रोध और बल दर्पण इन सबको त्याग देता है, किसी के अंदर कोई आसक्ति नहीं रहता, शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो सदैव शांत रहता है, और ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म यानी ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। आगे श्री प्रभुपाद जी बताते जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है, यानी शांत की व्याख्या अभी तक श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि शांति आपको इन सब चीजों में आएगी नहीं। वास्तव में क्या है, मनुष्य जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, सुख और शांति, बोला क्या चाहिए, बस सुख शांति चाहिए, सुख शांति आपको इस संसार में, पहले भगवान ने बोला असुखम, ये संसार असुख है, और शांति कैसे प्राप्त होगी वो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, यानी जब तक आप अपने को ये देह समझ के उसको तृप्त करने के लिए कोशिश करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तब तक तो शांति का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शांति कैसे होगी, जब आप इस देहात्म बुद्धि से ये जब देहात्म बुद्धि खत्म हो जाएगी ना, भगवान ने देखो ये भगवान ने बताया है, श्रीला प्रभुपाद जी तो हमें इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, भगवान ने बताया है कि ब्रह्म भूयाय कल्पते शांति, और ब्रह्म भूयाय कल्पते आपको तभी मिलेगा जब आप देहात्म बुद्धि से, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो कौन करता है, जो अपने आप को शरीर समझता है, जो शरीर समझेगा वही तो विषयों में आसक्त होगा, जो शरीर समझेगा वही तो खाने पीने में आसक्त होगा, जो शरीर समझेगा उसी को अहंकार होगा, बल होगा, दर्प होगा, काम होगा, क्रोध होगा, लेकिन जो शरीर से देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाएगा तो श्री प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि तो वह शांत हो जाता है, और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता, अब उसको एक एक को ये पता चल गया कि वो शरीर नहीं है, फिर उसको भले जो भी करो, क्रोध दिलाने के लिए या फिर इच्छाएं उत्पन्न करने के लिए कुछ भी कर लो, भले उसके सामने संसार की सबसे सुंदर वस्तु क्यों न खड़ी हो जाए, जिस तरह हरिदास ठाकुर और हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि उनको उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में 2.70 में इस प्रकार हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एक सुंदर श्लोक जो कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का जो है ना, मतलब सार भूत श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है और इतना अच्छा है, बहुत अच्छा श्लोक है। हम पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं 2.70, भगवान कहते हैं आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्वत् तत्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमानं अचल प्रतिष्ठम, यानी कि जो मनुष्य, श्री प्रभुपाद जी बता रहे, जो मनुष्य इच्छाओं की निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं हो रहा, तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे, इच्छाएं आती रहती आती। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म भूयाय कल्पते मनुष्य हो जाता है, जो भगवान की तरफ, भगवान से प्रेम जिसका हो जाता है, उसके अंदर इच्छाएं नहीं आती। अब मन का कार्य, उसके अंदर मन भी तो है, हृदय भी तो है, तो संसार में जब भौतिक वस्तुएं नजर आती हैं तो हो सकता है उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाए, लेकिन इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता। लेकिन उसकी बुद्धि, क्योंकि बुद्धया विशुद्धया युक्त, तो सबसे पहले क्या किया कि बुद्धि सत्वगुण में स्थित कर दी है। इच्छा अगर हो जाती है तो गलत नहीं है, लेकिन इच्छा को पूरा करने का प्रयास गलत है। इच्छा पूरी हो गई, इच्छा उत्पन्न हो गई, उसको अवॉइड नहीं, ये इच्छा मेरे लिए नहीं है, मैं तो देहात्म बुद्धि नहीं हूँ, मैं तो संसार में ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, तो मेरी इच्छा तो सिर्फ कृष्ण को खुश होनी करने की होनी चाहिए। जो अपने आप को इस तरह से समझा सकता है, इच्छा उत्पन्न होना बुरी बात नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर क्या बताया, तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, उसके हृदय में भी बहुत सारी कामनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन श्री बापा जी कहते हैं जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, उनको पूरा करने के लिए परेशान नहीं होता, कैसे? बहुत ही सुंदर उदाहरण भगवान ने कहा, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशंति सर्वे। जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवाह से प्रवाह प्रवेश करते हुए करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, जैसे समुद्र है उसके अंदर बारिश के दिनों में सारी नदियों का जल आता है, वहां से भी आ रहा होता है, वहां से आ रहा होता है, वहां से आ रहा होता है, बहुत सारी नदियों का जल उसके अंदर आता है, लेकिन समुद्र कभी अपनी तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। समुद्र जो है वो हमेशा शांत रहता है, और समुद्र शांत रहता है उसी प्रकार केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है जो कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परेशान नहीं होता। कौन शांत रहता है? जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है, वह नहीं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं केवल, वापिस से देखिए, जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, यानी कि इच्छाएं आती है लेकिन परेशान नहीं होता, कैसे? जैसे जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने निरंतर प्रवेश करने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है जो विचलित नहीं होता है, वो शांति प्राप्त कर सकता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। संसार के लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया कि आपको वही इंसान जो है वो तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे सशांति आपनोति न काम कामी, यानी जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहेगा वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि वो शांति प्राप्त करेगा जो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश ही नहीं करेगा, बस इन इच्छाओं को छोड़ देगा, भले आ रही है लेकिन छोड़ देगा, उससे परेशान नहीं होगा। लेकिन संसार के लोग इस बात को कभी नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे शांति तो तभी मिलेगी जब मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये इच्छा, यानी कि वो भगवान की इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से श्लोक को हमें समझाया। इस श्लोक के श्लोक नंबर 52 का जो सेकंड लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ध्यान योग, ज्यादातर लोग ध्यान योग का मतलब क्या समझते हैं कि भगवान के निराकार रूप पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि कोई भी भगवान का निराकार हो, यानी बस ज्योति पर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान योग परो नित्यम, के उसके अंदर एकदम भगवान का कोई रूप नहीं है लेकिन फिर ध्यान करो। ये भगवान का निराकार ध्यान हमारे लिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा। यहाँ तक कि भगवान ने तो क्या कहा, 12.5 दुःखं देहवत् भिरवाप्यते केशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसां। जिनका चित्त अव्यक्त के अंदर आसक्त है, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, यानी जिनका चित्त अव्यक्त, अव्यक्त मतलब निराकार भगवान में आसक्त है, क्लेशोदिकतरस्तेषां, उनके लिए तो सदैव क्लेश का कारण बनता है। क्यों, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त हमेशा गत, क्योंकि दुख देगा। क्यों, देहवत विरवाप्यते, क्योंकि हम स्वयं देहधारी हैं, हमको देह चाहिए, हम अव्यक्त का निराकार का ध्यान अच्छे तरीके से नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास ऐसा पावर नहीं है ना। अनुवाद देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त यानी निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। यानी भगवान सुझाव दे रहे हैं, भले भगवान ने रॉन्ग नहीं कहा लेकिन भगवान ने इतना कह दिया कि क्लेशोदिका आपको बहुत कठिन लगेगा। क्यों, जिन लोगों के क्या कठिन लगेगा, भगवान ने कहा जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त यानी निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं, उसके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। वो बहुत मुश्किल से, क्योंकि ध्यान होना इस कलयुग में बहुत कठिन है इसलिए उसको बहुत मुश्किल लगेगा। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर रहा है, क्योंकि देहधारी हम शरीर से रिलेटेड है, तो शरीर के बगैर एक निराकार ज्योति के ऊपर ध्यान लगाना, भगवान ने इसकी संस्तुति नहीं की। भगवान ने साफ कहा कि देहदारियों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे होते हैं जैसे देहदारी मनुष्य ना हो, जैसे अगर कोई देवता वगैरह हो जो ऐसे हो, वो शायद कर सकते हैं, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया था काफी टाइम पर, लेकिन देहदारी मनुष्य जो हम हैं उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल है, भगवान ने ऐसा बताया। क्योंकि ये जो 18 नंबर चैप्टर है वो उपसंहार है, निचोड़ है पूरे भगवद गीता का, तो इससे ये सारी चीजें भगवान पहले भी बता चुके हैं। अब जैसे भगवान ने यहाँ पर क्या कहा, विवेक से भी लगवासी, इस चीज को भगवान लगवासी मतलब थोड़ा खाना और अपने सारी चीजों को नियंत्रित रखना, उसी चीज को भगवान श्री कृष्ण ने 6.17 में बताया। भगवान ने क्या कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्ना सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को कष्ट नष्ट कर सकता है। यानी कि अगर आप एवरीथिंग एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड, अगर आपकी नियमित जो आदतें हैं शुरू से आपको इतनी नियमित हैं, तो फिर आप उस योग अभ्यास से उसको अब लगवाशी यानी कम खाना है। यहाँ पर तात्पर्य मिश्रा प्रभुपाद जी बताते हैं कि खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, ये सारी शरीर की आवश्यकताएं आहार निद्रा भय मैथुन, लेकिन अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। अगर हम एक्स्ट्रा करेंगे ना उन चीजों के लिए, खाने की ज्यादा परेशान होंगे, सोने के लिए ज्यादा परेशान होंगे, या फिर रक्षा और मैथुन के लिए बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होगी, तो फिर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आपकी अभ्यास योगाभ्यास की प्रगति जो है वो रुक जाएगी। जहां तक खाने का प्रश्न है तो इसे तो प्रसाद या पवित्रीकृति भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। सीधी तरह से प्रसाद खाएंगे तो फिर नियमित हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता 9.26 के अनुसार भगवत गीता कृष्ण क्या बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रायश्चते। उसी तरह एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त होता है। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना में इतने कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, कंटिन्यूअस उसको पता होता है कि मुझे कैसा कार्य करना है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता। टाइम अपना सीधा इतना अच्छा लिखा हुआ है, अव्यर्थ कालत्वम, यानी कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना एक मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं गंवाता है, अतः वह कम से कम सोता है, ज्यादा सोने में समय नहीं लगाता है, बल्कि भगवान की कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करने में सदैव संतुष्ट रहता है। ध्यान योग परो नित्यम, इस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने इस छठे अध्याय में बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है। इसके थोड़ा श्लोक लेंदी हो जाता है लेकिन हमें पूरा समझना है इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं। चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 21, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शि समदर्शनः, के वास्तविक योगी, अब जो ध्यान लगाता है वो वास्तविक कौन सा ध्यान है, भगवान श्री कृष्ण वास्तविक योगी के विषय में बता रहे हैं कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको सर्वभूतात्मना, यानी कि सारे जितने भी जीव हैं उसमें मुझको, और आगे भगवान ने कहा सर्वभूतानि चात्मनि, कि सारे लोगों को मुझ में देखता है, यानी कि मेरे को हटाकर कभी योग हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है, निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने योग की पराकाष्ठा कि योग का एंड किस पर होगा, मुझ पर, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो मुझ परमेश्वर को ही सर्वत्र देखता है। और आगे श्लोक नंबर 30 इतना सुंदर श्लोक है कि योग का क्या मतलब है भगवान श्री कृष्ण इसमें बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं। चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 30 भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मेन प्राणश्यति। बस ये श्लोक अगर किसी को समझ में आ जाए तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, योग अभ्यास के द्वारा जो उसको सिद्धि प्राप्त होती है उसका रियल मकसद क्या है। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति, यो माना जो, माम मतलब मुझे, पश्यति मतलब देखता है, जो मुझे देखता है, भगवान खड़े होकर कह रहे हैं जो मुझे देखता है यानी कृष्ण को देखता है, कहां पर, सर्वत्र। ऐसा नहीं कि वो किसी निराकार का ध्यान कर रहा है, ऐसा नहीं वो किसी शून्य का ध्यान कर रहा है। भगवान ने कहा जो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सदैव मेरा ध्यान करता है, सर्वं च मयि पश्यति, और हर एक चीज में मुझे देखता है, मुझे हर जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, यानी सर्वं च मयि पश्यति, खाली मुझे देख लेता है तो उसे लगता है निराकार भी इधर है, परमात्मा भी इधर है, भगवान भी इधर है, बस कृष्ण जिधर है वहां सब कुछ है। तो सब कुछ जो भगवान में देखता है कृष्ण में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि, भगवान ने बहुत सुंदर बताया उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं पर मैं हूं या ना हूं, मैं सदैव उसको नजर आता हूँ, उसकी मानस पटल में इतना छा जाता हूँ कि चाहे वो कहीं भी चला जाए वो उसके लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता हूँ। और आगे तो भगवान ने हद ही कर दी ये कहकर, सच में न प्रणश्यति, और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता, यानी कि वो सदैव मेरा चिंतन करता है और मैं सदैव उसका चिंतन करता रहता हूँ। यहाँ पर एक श्लोक में और लेना चाहूंगी जो कि 6.31 भगवान ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर बताया है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति कत्वमास्थितम सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितम् यो माम। सर्वभूत मतलब प्रत्येक जीव के हृदय के अंदर, यो माम जो मुझे भजति यानी भक्ति पूर्वक सेवा करता है। अब क्या करता है, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में और परमात्मा ये कोई दो चीज नहीं, अभिन्न है। तो जो मेरी भी सेवा करता है परमात्मा के रूप में या परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, ये जानकर के भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, तो वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ध्यान योग के विषय में बहुत ही सुंदर बताते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन, कृष्ण के पूर्ण स्वरूप में यानी शंख चक्र गदा पद्म तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। वास्तव में ध्यान निराकार का फिर भी नहीं बताया, यहाँ पर क्या बताया कि ध्यान किसके लिए होता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कितना क्लियर, भगवान श्री प्रभुपाद जी कितना क्लियर बताते हैं कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है, परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं, यानी कि जितने भी जीव हैं उनके हृदय में जो परमात्मा है वो एक ही है, अलग अलग परमात्मा नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरंतर एक निरत एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है। अभी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी योगी और भक्त के विषय में बता रहे हैं कि इनमें कोई फर्क नहीं है, जो कंटिन्यूस परमात्मा का ध्यान लगाते हैं और जो कंटिन्यूस भगवान की सेवा करते हैं उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही वह भौतिक जगत में वह भिन्न विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त क्यों ना हो। संसार में दिखता है कि वो अलग अलग कार्य कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसका हृदय भगवान के अंदर लगा होता है इसलिए वो सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है। और इस कलयुग में तो और कोई ध्यान का कोई भी शास्त्र जो है वो बताता नहीं है, उसका कोई भी शास्त्र इसकी संस्तुति, क्योंकि भागवत महापुराण में बताया कृते ही अध्यायते विष्णु कि सत्योगों में भगवान का ध्यान किया जाता था और त्रेतायाम यज्ञ तो मुख्य, त्रेता में भगवान की पूजा किसके जरिए की जाती थी, यज्ञ के जरिए की जाती थी। और द्वापुरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तन, द्वापुर में भगवान की परिचर्या की जाती थी, विग्रह पूजा की जाती थी और कलौ तद हरि कीर्तन। कलयुग में अगर कोई ध्यान का कोई है ना भक्ति का कोई एक साधन है तो वो क्या है, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान की लीलाओं का ध्यान करना। और वास्तविक ध्यान इस कलयुग में नाम का ध्यान करना, क्योंकि अभिन्नत्वान नाम नामिनो, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इस कलयुग का एक ही ध्यान योग, यहाँ जो ध्यान योग परो नित्यम, सदैव भगवान के नाम का ध्यान करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना, भगवान के रूप को देखना, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, ये कलयुग के लिए सबसे बड़ा ध्यान योग है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।